आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। लोकसभा इंतखाबात के बाकी मरहलों के लिए चुनाव मुहिम तेज हो गई है। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के रहनुमाओं ने उत्तर प्रदेश में मुतादद रैलियां की। बिहार में अजीम इतिहाद के रहनुमाओं ने रैलियां की और लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की। सोलहवें मालियाती कमीशन ने काबिल गौर मामलात के बारे में आम लोगों, दिलचस्पी रखने वाली तंजीमों और अफराद से आरा और तजावीज तलब की हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने जुमे के रोज तक राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में गर्मी की लहर की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के बाकी मरहलों के लिए चुनाव मुहिम तेज हो गई है। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के करीमनगर और वारंगल में रैलियां की, जबकि आंध्र प्रदेश के राजमपेट और विजयवाड़ा में रोड शो किया। आज सुबह करीमनगर पार्लिमानी हलके में वाके वेमुलावाड़ा के मुकाम पर एक जलसायाम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने गुजश्ता 10 बरस के दौरान एनडीए सरकार की कामयाबियों और हसूलियाबियों का सहरा लोगों को दिया। जनाब मोदी ने तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और बीजेपी की पहले मुल्क की पॉलिसी के अज़्म को दोहराया। राजमपेट में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने लोगों से कहा कि वो अपने आप को परेशानियों से बचाने और खुशहाली लाने के लिए आंध्र प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाए।
आपके जीवन में साफ पानी जरूरी है या नहीं? मोदी घर घर पाइप से पानी पहुंचाना चाहता है, लेकिन यहां की सरकार जल जीवन मिशन में भी ठीक से सहयोग नहीं करती। पोलावरम प्रोजेक्ट के साथ इन्होंने क्या किया, ये आप इतने सालों से देख रहे हैं। यहां एनडीए सरकार बनेगी तो सिंचाई के प्रोजेक्ट तेजी से पूरे होंगे।
आंध्र प्रदेश में असेंबली इंतखाबात भी साथ साथ हो रहे हैं। बीजेपी के सीनियर रहनुमा ने कहा कि मुल्क ने कांग्रेस पार्टी का असल चेहरा देख लिया है और अब मुल्क का हर शख्स उनकी चाल से वाकिफ है। उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अहम रहनुमा और सरकर्दा शख्सियात ने अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव मुहिम में हिस्सा लिया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज रायबरेली में अपनी पहली इंतखाबी रैली से खिताब किया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने आज शाहजहांपुर के मकाम पर एक चुनाव रैली में बीजेपी की सख्त तनकीद की और कहा कि बीजेपी सिर्फ फर्जी वादे करती है। बाद में उन्होंने फरूखाबाद में पार्टी उम्मीदवार की हिमायत के लिए एक चुनाव रैली से खिताब किया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी पार्टी के उम्मीदवार और उमूर दाखिला के मरकजी वजीर ममलिकत अजय मिश्रा तेनी की हिमायत के लिए लखीमपुर खीरी जिले में इंतखाबी रैली से खिताब किया। तेलंगाना के वजीर आला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने आज कहा कि बीजेपी और बीआरएस ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया है। अपनी पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत के लिए आरमूर के मकाम पर रोड शो में लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर को कांग्रेस पार्टी के जरिए अवाम को कराई गई यकीन दहानियों के नफाज के बारे में सवाल करने का कोई हक नहीं है। बीआरएस के सरबराह और साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज सुबह नरसापुर के मकाम पर एक रोड शो के दौरान बीजेपी और कांग्रेस की तनकीद की और कहा कि दोनों पार्टियां एक जैसी हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने अपने इंतखाबी वादे, खासतौर पर फसलों के कर्ज को माफ करने के वादे को पूरा नहीं किया है। बिहार में एनडीए और अजीम इतिहाद के रहनुमाओं ने अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में अवामी जलसों से खिताब किया और रैलियां की। बीजेपी के सीनियर लीडर नितिन गडकरी ने बेगूसराय पार्लिमानी हलके में मिठानी के मकाम पर एक जलसायाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एनडीए सरकार गुर्बत, बेरोजगारी और भुखमरी के मसाइल को हल कर सकती है। उन्होंने कहा कि मकई और गन्ने से ایتھنول کی پیداوار ملک کی زراعت کے شعبے میں انقلاب لا رہی ہے اور کسانوں کو اب اپنی فصل کی بہتر قیمت مل رہی ہے. جناب گڈکری نے کہا کہ صرف وزیراعظم مودی ہی بھارت کو دنیا بھر میں 5 ٹریلین کی معیشت کی راہ پر لے جا سکتے ہیں. آر جے ڈی، کانگریس اور بائیں بازو کی پارٹیوں پر مشتمل عظیم اتحاد کے رہنماؤں نے بھی انتخابی ریلیاں کی اور گھر گھر جا کر لوگوں سے ملاقات کی. آر جے ڈی کے رہنما تیجسوی پرساد یادو نے کاراکاٹ پارلیمانی حلقے میں اکھوری گولا کے مقام پر ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا. جناب یادو نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے اچھے دن کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ مرکز میں این ڈی اے سرکار کے 10 سال بعد بھی بے روزگاری عروج پر ہے اور لوگوں کی نقل مکانی نہیں رکی ہے. آر جے ڈی رہنما نے کہا کہ بہار کے لیے خصوصی درجے کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا. لوک سبھا انتخابات کے 5ویں مرحلے میں 6 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں کی 49 پارلیمانی سیٹوں کے لیے کل 695 امیدوار میدان میں ہیں. ان پارلیمانی حلقوں میں 20 مئی کو چناؤ ہوں گے جس کے لیے کل 1586 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے. پرچہ نامزدگی داخل کرانے کی آخری تاریخ 3 مئی تھی اور کچھ امیدواروں کی طرف سے نام واپس لیے جانے کے بعد اب 695 امیدوار میدان میں ہیں. لوک سبھا انتخابات کے دوران ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے اہم پارلیمانی حلقوں کے انتخابی منظرنامے کی سیریز کے تحت آج ہم جھارکھنڈ کی کھوٹی لوک سبھا سیٹ سے متعلق ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں. کھوٹی اور جھارکھنڈ کی 3 اور سیٹوں کے لیے 4th مرحلے کے تحت 13 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے. اس مرتبہ کھوٹی پارلیمانی حلقے میں 13 لاکھ سے زیادہ رائے دہندگان ہیں. اس حلقے میں اصل مقابلہ این ڈی اے کے امیدوار مرکزی وزیر ارجن منڈا اور ڈی آئی اے کی طرف سے کانگریس کے امیدوار کالی چرن منڈا کے درمیان ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
کھوٹی لوک سبھا پارلیمانی حلقہ اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مجاہد آزادی بھگوان برسا منڈا کی جائے پیدائش ہے. ان کی پیدائش کھوٹی ضلع کے اولیہاٹو گاؤں میں ہوئی تھی. اس علاقے کے منڈا قبائل برطانوی حکومت کے خلاف لمبی لڑائی میں برسا منڈا کی قیادت میں اپنی بہادری اور شجاعت کے لیے مشہور ہیں. کھوٹی پارلیمانی حلقے میں تورپا سمدیگا، کولبیرا، تامر اور خرسون سمیت 6 اسمبلی حلقے ہیں. یہ سیٹ درج فہرست قبائل کے لیے ریزروڈ ہے اور یہاں 50% منڈا قبائل کی آبادی، 21% عیسائی جبکہ 29% آبادی کا تعلق دیگر طبقوں سے ہے. اس حلقے میں 1704 پولنگ مراکز، 6,66,000 مرد ووٹرز اور 6,45,000 خواتین ووٹرز ہیں. آکاشوانی نیوز رانچی سے شلپی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر.
بھارت کے انتخابی عمل کا مشاہدہ کرنے کے لیے دورے پر آئے ایک غیر ملکی وفد نے کہا ہے کہ یہاں کے رائے دہندگان کا پولنگ کے تئیں جوش و خروش اور ان کے چہرے پر بے پناہ مسرت بھارت کے انتخابی کمیشن کے ذریعے نافذ کردہ ووٹنگ بیداری پروگرام کی کامیابی ہے. انتخابی کمیشن نے یہ پروگرام دوسرے ملکوں کے انتخابی بندوبست سے متعلق اداروں کے ساتھ بین الاقوامی تعاون اور شراکت داری کے لیے ترتیب دیا ہے. اس پروگرام کے تحت انتخابی عمل کا مشاہدہ کرنے کے لیے غیر ملکی وفد کے نمائندے مہاراشٹر آئے ہیں. رائے گڑھ میں پولنگ مرکز پر پولنگ کے عمل کا معائنہ کرنے کے بعد وفد نے آج ریاست کے اعلی انتخابی آفیسر ایس چوکلنگم سے ملاقات کی اور بھارت کے انتخابی عمل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. اس غیر ملکی وفد میں بنگلہ دیش، سری لنکا، قزاقستان اور زمبابوے کے نمائندے شامل ہیں. بی جے پی کے اعلی رہنما اور مرکزی وزیر خزانہ محترمہ نرملا سیتارمن نے کانگریس رہنما راہل گاندھی کے ان الزامات کو رد کر دیا ہے کہ سرکاری شعبے کے اداروں کو ختم کیا جا رہا ہے اور ان کی حالت خراب ہے. محترمہ سیتارمن نے جناب گاندھی کے الزامات کو رد کرتے ہوئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر دعویٰ کیا کہ نریندر مودی سرکار میں سرکاری شعبے کے ادارے پھل پھول رہے ہیں. محترمہ سیتارمن نے الزام لگایا کہ کانگریس کی زیر قیادت یو پی اے سرکار میں سرکاری شعبے کے اداروں کو نقصان پہنچا ہے. بی جے پی نے آج کانگریس لیڈر سیم پیٹروڈا کے بھارتی افراد کے بارے میں مبینہ قابل اعتراض تبصرے پر ان کی شدید نکتہ چینی کی ہے. نئی دلی میں صحافیوں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان سدھانشو ترویدی نے کہا کہ جناب پیٹروڈا نے بھارت کی ثقافت اور شناخت کے ساتھ ساتھ ملک کے لوگوں کی توہین کی ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے لوک سبھا انتخابات آگے بڑھ رہے ہیں کانگریس پارٹی بے نقاب ہوتی جا رہی ہے. جناب ترویدی نے الزام لگایا کہ کانگریس کا پورا نظریہ لوگوں کو تقسیم کرنے کا ہے. بی جے پی کے لیڈر اور مرکزی وزیر راجیو چندرشیکھر نے الزام لگایا کہ جناب پیٹروڈا کا بیان کانگریس کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سولہویں مالیاتی کمیشن نے ٹرمز آف ریفرنس ساتھ ہی ایسی عام حکمت عملی سے متعلق عوام، متعلقہ تنظیموں، और अफराद से आरा तजावीज तलब की हैं जो कमीशन की तरफ से अपनाई जा सकें। मालियाती कमीशन के कामकाज से मुतालिक मसले पर भी तजावीज तलब की गई हैं। ये तजावीज 16वें मालियाती कमीशन की वेबसाइट पर कॉल फॉर सजेशंस सेक्शन के तहत दर्ज कराई जा सकती हैं। 16वें मालियाती कमीशन को आईन हिंद के मुताबिक सदर जमहूरिया की तरफ से कायम किया गया है, जिसके चेयरमैन डॉ अरविंद पानागिरिया हैं। आफात के बंदोबस्त से मुतालिक कानून 2005 के तहत कायम किए गए फंड के हवाले से आफात के बंदोबस्त के लिए किए जाने वाले इकदाम की खातिर सरमाया इकट्ठा करने के मौजूदा इंतजाम का जायजा लेना और इससे मुतालिक जरूरी सिफारिश पेश करना भी इस कमीशन के दायरे इख्तियार में है। मरकजी सेहत सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्र ने आज थैलेसीमिया की बीमारी से निमटने के लिए बरवक्त पता लगाने और इसकी रोकथाम की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में थैलेसीमिया के तकरीबन 1,00,000 मरीज हैं, जबकि हर साल तकरीबन 10,000 नए मामलात सामने आते हैं। उन्होंने जांच के जरिए बरवक्त इस मर्ज का पता लगाने और सरगर्म इकदाम की जरूरत पर जोर दिया। जनाब चंद्र नई दिल्ली में थैलेसीमिया के आलमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कौमी सेहत मिशन के तहत मौजूदा तौलीदी और बच्चों की सेहत RCH प्रोग्रामों में थैलेसीमिया की लाजमी जांच को शामिल करने की वकालत की ताकि इस बीमारी के फैलाव को कम किया जा सके। इस साल जम्मू कश्मीर से 7,000 से ज्यादा लोग हज के लिए रवाना होंगे। पहली परवाज कल श्रीनगर बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से रवाना होगी। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने खबर दी है कि 320 आजमीन हज का पहला ग्रुप कल रवाना होगा। इस मुकद्दस सफर पर बगैर महरम के तकरीबन 37 खवातीन आजमीन हज भी रवाना होंगी, जिनमें बड़ी तादाद श्रीनगर से जाने वाली खवातीन की है। आजमीन हज की सहूलत के लिए सेहत सिक्योरिटी और इमरजेंसी खिदमात समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका तौर पर इकदाम किए जाएंगे। आजमीन हज को जरूरी मालूमात और रहनुमाई फराहम कराने की खातिर 2 मरतबा तरबियती इजलास भी मुनक्किद किए जा चुके हैं। आकाशवाणी कोलकाता में आज गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का यौम पैदाइश पूरे जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाया गया। बंगाली कैलेंडर के मुताबिक उनका यौम पैदाइश बैसाख की 25 तारीख को मनाया जाता है। इस मौके पर सुबह से ही बंगाली, हिंदी और उर्दू में कई प्रोग्राम नशर किए गए। अमरीका ने कहा है कि उसने गुज़स्ता हफ्ते जनूबी गजा के रफा के इलाके पर इसराइल के भरपूर हमले की तशवीश के पेश नजर इसराइल को बमों की सप्लाई रोक दी है। अफसरान के मुताबिक इस सप्लाई में 900 किलोग्राम और 225 किलोग्राम के बम शामिल थे। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद जब से बाइडन इंतजामिया ने इसराइल को अपनी मजबूत हिमायत दी है, तब से इस नौयत की यह पहली ताखीर है। अमरीका इसराइल का सबसे करीबी हलीफ और हथियारों का सबसे अहम सप्लायर रहा है। इमदाद की फराहमी में रुकावट, वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू और सदर जो बाइडन की हुकूमतों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की वाज़ेह अलामत है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने जुमे के रोज तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में गर्मी की ताजा लहर की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 दिन के दौरान पुडुचेरी में, जबकि आइंदा 5 रोज के दौरान गुजरात के साहली इलाकों में गर्मी और मरतूब मौसम जारी रहेगा। शनिचर के रोज तक शिमाल मशरकी भारत में गरज चमक के साथ हल्की से औसत बारिश की पेशगोई है। मुल्क के बकिया इलाकों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है। और IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान मैच जारी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जीत के लिए 166 रन का निशाना रखा है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुकदरा 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 165 रन बनाए। इससे कबल लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोनों ही टीमों ने 11-11 मैच खेलकर 12 पॉइंट्स हासिल किए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद बेहतर रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल पर 4th मकाम पर है। आज के खेल की जीत दोनों ही टीमों के लिए बहुत अहम है। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स 16 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त हैं। कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मकाम पर क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। लोकसभा इंतखाबात के बाकी मरहलों के लिए चुनाव मुहिम तेज हो गई है। वज़ीरे आज़म और बीजेपी के सरकर्दा लीडरों ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई रैलियां की। बीजेपी और कांग्रेस के रहनुमाओं ने उत्तर प्रदेश में मुतादद रैलियां की। बिहार में अजीम इत्तेहाद के रहनुमाओं ने रैलियां की और लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की। 16वें مالیاتی کمیشن نے قابل غور معاملات کے بارے میں عام لوگوں، دلچسپی رکھنے والی تنظیموں اور افراد سے آراء اور تجاویز طلب کی ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے جمعے کے روز تک راجستھان اور مدھیہ پردیش کے علاقوں میں گرمی کی لہر کی پیشگوئی کی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں حیدرآباد میں لکھنؤ سپر جائنٹس اور سن رائزرز حیدرآباد کے درمیان میچ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔